ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। आज वह पावन दिन है जिस दिन हम प्रतिवर्ष बड़े पवित्र भावों से आज के दिन चैत्यालय में मंदिर में आकर के जिनेन्द्र भगवान की वाणी श्रुत द्वादशांग वाणी। श्रुत का तात्पर्य है भगवान ने जो उपदेश दिया और द्वादशांग के रूप में गणधर परमेष्ठियों ने उसको संकलित किया और उसको अपनी भावी पीढ़ी के लिए प्रवाहित किया और वह आचार्य परंपरा के माध्यम से महान मुनियों के माध्यम से प्रवाहित होती हुई वह श्रुत की पावन गंगा यहां तक आई। महावीर भगवान मोक्ष जाने के पश्चात तीन केवली गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, ये तीन केवली मोक्ष गए। भगवान महावीर पंचम काल में मोक्ष गए थे और उनके पश्चात जम्बू स्वामी पंचम काल में मोक्ष गए। महावीर भगवान चतुर्थ काल में गए थे, जम्बू स्वामी पंचम काल में गए, परंतु इन तीनों केवल ज्ञानियों का जन्म पंचम काल में नहीं हुआ था, उनका जन्म चौथे काल में हुआ। और चौथे काल में ही, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो शरीर मिलता है भव्य जीवों को, चौथे काल के जन्म से ही मिलना संभव है। पंचम काल में वह शरीर नहीं मिलता जिसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों केवल ज्ञानी चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष गए। केवलियों की एक परंपरा होती है, अनुबद्ध केवली और अननुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवलियों में ये तीन नाम आते हैं, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी का निर्वाण कहां से हुआ? मथुरा क्षेत्र से। मथुरा का इतिहास श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ इतिहास है। उसी क्षेत्र से अंतिम केवली जम्बू स्वामी मोक्ष प्राप्त करते हैं। गौतम स्वामी कहां से मोक्ष गए? गुनावा से मोक्ष गए। यह गुनावा किस प्रांत में है? बिहार प्रांत में है। ये अनुबद्ध केवली तीन हैं, और दूसरे प्रकार के जो केवली होते हैं वो अननुबद्ध केवली कहलाते हैं। अनुबद्ध का मतलब एक के पश्चात एक, एक का निर्वाण होने के पश्चात दूसरे को केवल ज्ञान प्राप्त हो और यह क्रम खंडित न हो। जैसे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ तो शाम को सायंकल वेला में संधि काल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा होता है। मोक्ष जाने का जो क्रम है वह इस प्रकार भी हो सकता है। यदि केवल ज्ञानी का अभाव न हो तो उसको अनुबद्ध कहते हैं, और यह काल खंड पड़ जाए तो अननुबद्ध कहते हैं। तो अनुबद्ध केवली भी हुए हैं, उनमें जो अंतिम अननुबद्ध केवली थे मोक्ष जाने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसे अनुबद्ध केवली का नाम आप लोगों को मालूम है? नहीं। जम्बू स्वामी का नाम सुना है कि मोक्ष गए। पंचम काल में एक अनुबद्ध केवली भी मोक्ष गए हैं, उसका उल्लेख तिलोई पन्नति ग्रंथ में मिलता है जो 2000 साल पहले लगभग लिखा गया है। एक अनुबद्ध केवली श्रीधर केवली, नाम सुना? श्रीधर केवली कहां से मोक्ष गए हैं ये मालूम नहीं है, और ये मिलता भी नहीं कि कहां से वे मां मोक्ष प्राप्त करते हैं। इतिहास जब गायब रहता है तो हम केवल उसके इर्द गिर्द जो इतिहास मिलते हैं उस अपेक्षा से उनके निर्वाण स्थान को, निर्वाण समय को पहचानने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है वे कुंडलगिरी से मोक्ष गए, और कुंडल नाम के अनेक गांव हैं। एक बिहार में भी है, एक मध्य प्रदेश में भी है, और एक महाराष्ट्र में भी है। कुंडल नाम के गांव तो है, लेकिन कुंडल गांव का नाम हो और पर्वत भी हो, ये दोनों संकेत साधन पहचानने के लिए हमें प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि तिलोय पन्नति नामक ग्रंथ में श्रीधर केवली का जो नाम आया है वो कुंडल गिरी का साथ आया है, कुंडल से गए हैं ऐसा नहीं आया। कुंडल भी हो और गिरी भी हो, तो कुंडल गिरी से मोक्ष यदि गए हैं तो कुंडलपुर भी एक है, और महाराष्ट्र में भी एक कुंडल है, वहां भी गिरी है और यहां भी गिरी है। वहां भी कुंडलाकार है और यहां भी कुंडलाकार है। तो ये संकेत मिलने के पश्चात अपने को और भी आगे बढ़ना पड़ता है, तो फिर वहां से गए कि यहां से गए, कैसे गए इत्यादि ये बातें शिलालेख ताम्रपत्र और राजवंश परंपरा की अपेक्षा से बहुत पहले से इसकी चर्चा चली आ रही हो और ऐसे कुछ इतिहास हमारे लिए प्राप्त होते हो, तो वो क्षेत्र अंतिम केवल ज्ञानी श्रीधर स्वामी वहां से मोक्ष प्राप्त की कर चुके हों, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। तो कहीं से भी गए हों वो तो गए, हम कब जाएंगे ये चिंता करना है, और कहां से जाना है यह भी विचार करना है। निगड़ी से जाना है, शिखर जी से जाना है, कहां से जाना है यह हमको भी चिंता करना है। सबसे ज्यादा चिंता अपने को अपनी आत्मा की चिंता करना है। बाहर में किसी भी तीर्थ क्षेत्र से कोई भी महान आत्मा निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त क्यों न हुआ हो, कहीं से भी गए हो, वहां जाकर दर्शन करके अपने आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने मात्र के लिए ये तीर्थ क्षेत्र आदि हमारे उपयोग में आते हैं। महावीर स्वामी ने कहा कि संसारी प्राणी को सबसे ज्यादा डेंजर और सबसे ज्यादा उपकारी यदि कोई ज्ञान है तो वह श्रुतक ज्ञान है। उपकारी भी उतना हो सकता है और अपकारी भी उतना ही हो सकता है। अपना ज्ञान यानी कैसा ज्ञान, यह श्रुतक ज्ञान यदि मिथ्या हो तो अपकारी, यह सही सही धर्म का स्वरूप नहीं जान पा रहा हो तो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, क्या करेगा, कर्मों का बंद करता रहेगा और अपने अपने निजी परिस्थिति को सुधार न करते हुए वह भटकता रहेगा। हम लोगों के पास केवल ज्ञान नहीं है, पंचम काल में किसी भी मुनि महाराजों के पास या श्रावकों के पास तो होता ही नहीं, मुनियों के पास तो केवल ज्ञान नहीं है। इतना ही नहीं, मनः पर्यय ज्ञान भी मुनियों के पास नहीं है। अवधि ज्ञान भी बिरले ही पंचम काल में किसी किसी मुनि को उत्पन्न हो सकता है, वह भी हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो ज्ञान कितने बच गए पंचम काल में, दो ज्ञान बच गए, मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। श्रुतक ज्ञान भी उत्कृष्ट रूप से हो इसकी कोई गारंटी नहीं बनती। उत्कृष्ट श्रुतक ज्ञान को धारण करने वाले मुनियों की परंपरा भी अब समाप्त हो गई। महावीर भगवान को प्रथम शिष्य के रूप में जो गौतम स्वामी मिले थे वे द्वादशांग के संपूर्ण ज्ञाता थे और वे भगवान महावीर के समोशरण में 30 साल तक भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। भगवान तो करते ही थे लेकिन गौतम स्वामी भी श्रावकों के माध्यम से या किसी मुनि के माध्यम से प्रश्न आदि करने पर बराबर उसका उत्तर देते हुए उनके सम्यक ज्ञान की वृद्धि में सहयोग देते थे। जब भव्य जीवों का श्रुतक ज्ञान सुधरता है आत्म कल्याण के रास्ते पर वे अवश्य लगते हैं। धर्म का वस्तु स्वरूप सही सही प्राप्त करने के लिए, धर्म के वस्तु स्वरूप को सही सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भव्य जीवों को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। केवल पूजा भक्ति करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, श्रुतक ज्ञान का सुधार जो होना चाहिए वह सम्यक ज्ञान से होता है। सम्यक ज्ञान कहां से मिलेगा? तो शास्त्र का, सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करने से सम्यक ज्ञान उपलब्ध होगा। और कहां से मिलेगा? सच्चे शास्त्र के ज्ञाता आज भी पंचम काल में मुनि महाराज जो विराजमान हैं, उनका उपदेश सुनने से, उनके मार्गदर्शन में ध्यान, अध्ययन, चिंतन, मनन, व्रत धारण इत्यादि करने से हमारा श्रुत ज्ञान अनादिकाल से जो भटका हुआ है वह लौट करके आ सकता है और कल्याण के रास्ते पर लग सकता है। अपने को क्या करना पड़ेगा? केवल मंदिर का दर्शन करना और पूजन करना। श्रुत पंचमी के दिन आया है तो वो भी करते नहीं कई लोग। अगर आज विहार नहीं होता तो श्रुत पंचमी की पूजा करने वाले कोई भी लोग तैयार नहीं थे, इतने इंद्रिय विषयों में खो गए हैं कि हमारी जिनवाणी को भी भूल करके, उनकी पूजा को भी भूल करके बराबर भोजन करते हैं, सोते हैं, उठते हैं और काम पर निकल जाते हैं। शरीर की सेवा में इतने 24 घंटे रात दिन लगे हैं कि धर्म की तरफ, आत्म कल्याण की तरफ ध्यान नहीं है। तो धर्म के नाम से हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। कौन सा दिन किस लिए आया, क्या करना, यह भी ध्यान नहीं है। ये तो प्रतिवर्ष करना चाहिए। उधर उत्तर भारत में आज के दिन जिनवाणी जो लिखी गई थी 2000 वर्ष पहले लिपिबद्ध हुआ था और थोड़ा बहुत बचा हुआ था, पूरा द्वादश्यांग का ज्ञान इसमें नहीं है, अंगांश का ज्ञान है। और वो जिन मुनियों के पास बजा था, बहुत प्रयास करके उन्होंने दूसरे मुनियों को पढ़ाया तो बचा हुआ श्रुत ज्ञान आज उपलब्ध पंचम काल में हो रहा है। और इसका उद्धार कहना चाहिए, ये भी हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथों के माध्यम से मठों में, जहां पर शास्त्रों की सुरक्षा होती है, जहां पर परंपरा से शास्त्र लिखते भी थे, रखते भी थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे पहले, आज के जमाने के समान छापकाने की व्यवस्था नहीं होती थी और ग्रंथों को भी हाथ से कभी नहीं लिखते थे। चतुर्थ काल में ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे। श्रावक वर्ग समो शरण में जाकर के उपदेश जरूर सुन लेता था, लेकिन लिख करके शास्त्र बना करके कोई श्रावक भी नहीं रखते थे और मुनि महाराज भी नहीं रखते थे। पंचम काल में शास्त्र की रचना प्रारंभ हो गई और इसको लिखा, जो आज आपने षटखंड आगम नामक श्रुत की पूजा की, शास्त्र की पूजा की, जिनवाणी की पूजा की है, इसको किसने लिखा था? धर्षेण आचार्य, जो पुष्पदंत और भूत बलि के गुरु थे, गुरु ने उपदेश दिया और शिष्यों ने इसको लिपिबद्ध किया, लिख के रखा। उस समय जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में यह षटखंडागम लिखा गया है, इसी में नमोकार मंत्र भी लिखा गया है। सबसे पहला नमोकार मंत्र यदि किसी ग्रंथ में लिखा तो षटखंडागम ग्रंथ में लिखा, उसमें 5 पद आते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सौवसाहूणम, ये 5 पद आते हैं। मंगलाचरण के रूप में इसको लिखकर गुरु के द्वारा उपदिष्ट श्रुत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। पुष्पदंत और भूत बलि दो मुनि महाराज जो दक्षिण के थे, कहां के थे? दक्षिण यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं। महाराष्ट्र भी दक्षिण में ही आता है, कर्नाटक भी दक्षिण में ही आता है, मध्य प्रदेश से उधर काश्मीर तक जो आज का भारत है वो सब उत्तर कहलाता है। उधर फिर चीन भी है, वो भी उत्तर दिशा में है। फिर वो जापान भी है, वो भी उत्तर दिशा में कहलाएगा। ये षटखंड आगम शास्त्र सबसे ज्यादा पुराना और प्राचीन शास्त्र है। इसका स्वाध्याय अध्ययन मनन करने से साक्षात जिनेन्द्र भगवान महावीर भगवान की वाणी का स्वाध्याय हो जाता है। भगवान महावीर ने जैसा उपदेश दिया था सूत्र के रूप में गौतम गणधर ने उसको रचा, गुंथा द्वादशांग के रूप में, और वही वाणी मुनि परंपरा से आचार्य परमेष्ठियों की परंपरा से धर्षेण आचार्य तक आया और उन्होंने दो शिष्यों को ये पंचम काल में लुप्त न हो, क्योंकि सबकी स्मरण शक्ति मेमोरी पावर कम होती जा रही थी, मुनियों की भी और श्रावकों की भी, और इसी कारण से द्वादशांग का ज्ञान सारा का सारा लुप्त होने जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा बहुत अंगांश का ज्ञान जिन मुनियों के पास बचा था उन्हीं मुनियों में से एक धर्षेण आचार्य थे, इनके पास थोड़ा सा श्रुत ज्ञान बचा था जो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत का और कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग का जो ज्ञान है आंशिक रूप में बचा था। और उन्होंने, क्योंकि स्वयं की उनकी वृद्धावस्था आ चुकी थी, वो स्वयं लिख नहीं सकते थे और उनको जल्दी आत्म साधना करके समाधि मरण की तैयारी में थे, और ऐसी परिस्थिति में जल्दी मैं किसी को यह ज्ञान दे दूं और अपना आत्मकल्याण करूं, समाधि मरण करूं, इस जिज्ञासा थी। दूसरे संघ में जहां मुनि महाराज अपने ज्ञान की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से अच्छे थे, अच्छे मुनियों को अपने हाथों से पत्र लिख करके भेजा और वे दूसरे संघ के दो मुनि महाराज उनको उपलब्ध हो गए और उनको उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाया और पढ़ा करके उनको विहार करा दिया और वे स्वयं वहीं पर रह गए। कहां पर? गिरनार जी, गिरनार पर्वत पर एक गुफा है, धर्षेण गुफा, जो मंदिर है रास्ते में लगता है, उस मंदिर के बाजू में से ऐसे नीचे उतरेंगे तो उधर एक धर्षेण गुफा है, वहां पर वे तपस्या करते थे और उन दोनों मुनियों को शिष्य बना करके उनकी परीक्षा करके, कैसे परीक्षा की अभी सुनाया था, मंत्र दे करके, एक को मंत्र अक्षर कम करके और एक को मंत्र बराबर अक्षर रख करके जब साधना के लिए दिया तो उसमें उन दोनों ने उस मंत्र की जब साधना की तो पहले जब मंत्र हाथ में आया तो यह गुरु आज्ञा कह करके, गुरु के ऊपर कोई शंका नहीं की, उस मंत्र का परीक्षण नहीं किया, जैसा दिया था वैसा ही पढ़ा। तो गुरु के ऊपर शंका नहीं करते, गुरु ने जो कहा उस पर शंका नहीं होती शिष्य के लिए, कितने आज्ञा प्रदानी होते हैं। जैसा संकेत था वैसा ही उन्होंने ले लिया और उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठ गए तो एक को, दोनों को मंत्र सिद्ध हुआ लेकिन एक को कैसा देवता प्रकट हुआ? एक आंख नहीं था और दूसरे को दांत दांत कम थे। हाँ, तो परीक्षण हो गया, मंत्र सिद्ध हो गया, और यह अंतर देख करके उन्होंने देखा कि हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है और इनके लिए अच्छा नहीं है। वो स्वयं ही फिर बाद में परीक्षण करते हैं कि इसमें कोई ना कोई कमी है, और कमी को दूर करके पुनः जब उन्होंने सिद्ध किया उस मंत्र को तो बराबर सिद्ध हो गया, और जाकर के गुरु से कहते हैं, महाराज हम दोनों सिद्ध करके आए तो कैसा, तो पहले हमको ऐसा हुआ और बाद में ऐसा हुआ। तो ऐसा बताने पर उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुद्धिमान समझकर, विवेकी समझकर बहुत अच्छा समझा, और वो पढ़ाने के योग्य, ज्ञान देने के योग्य समझ करके दोनों को अपने पास जो ज्ञान था उसको दे दिया। इसके पश्चात उन दोनों को रवाना कर दिया, करवा दिया, और वहां से चल करके चातुर्मास हेतु ये दूर चले आते हैं और महाराष्ट्र प्रांत में ही आते हैं। ये जो कहां भरूच मुंबई के पास है, भरूच के पास कौन सा क्षेत्र, वो अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात में आता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर ही समझना चाहिए। यहां पर भरूच गुजरात में आए, क्या नाम, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर आए, भरूच के पास है, अंकलेश्वर आए और वहां पर चातुर्मास करके उन्होंने शास्त्र लिपिबद्ध किया, शास्त्रारूढ़ हो गया। भगवान महावीर की वाणी सर्वप्रथम लिखी गई, और फिर भूतबली पुष्पदंत, ये जो दो थे, ये दोनों जब लिखे तो परस्पर में मिलान किया, संशोधन किया, जब संशोधन करके शास्त्रारूढ़ रूप से जो लिख करके रखे थे वही शास्त्र आज तक हस्त लिखित रूप में कब तक चले आए, 2000 साल से लेकर शांति सागर महाराज के काल तक हस्तलिखित रहते थे, उनकी रक्षा करते हुए आए। अगर वो नष्ट हो गए होते तो आज पंचम काल में हमको कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत पढ़ने को नहीं मिलते, लेकिन पुण्य तो था ना अपना, भाग्यशाली हैं हम लोग जो ये शास्त्र बच गए। 2000 साल के काल के अंदर कोई अंतराय, विघ्न इत्यादि नहीं आया, फिर भी ऐसा पाप कर्म का उदय हो गया था और ये ग्रंथ नष्ट होने जा रहे थे, कीड़े लग चुके थे। ऐसी परिस्थिति में लोगों में चर्चा चलती है कि दक्षिण प्रांत मूड बिद्री में ये शास्त्र षटखंड आगम है और वहां पर केवल लोग दर्शनार्थ जाते हैं, सारे भर भारतवर्ष के दिगंबर जैन लोग दर्शनार्थ जाते हैं, नमस्कार पूजन करके आ जाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको युग बदल गया है, छापकाने आ गए, ताम्र पत्र भी, ताम्र पत्र के ऊपर भी लिपिबद्ध किया जा सकता है। इन विचारों को लेकर के गुरु के पास चले गए। किस गुरु के पास? शांति सागर महाराज के पास। तो शांति सागर महाराज ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, जिनवाणी का उद्धार तो होना ही चाहिए, और वह पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अध्ययन करने के लिए समाज में सभी भव्य जीवों को मिल जाए तो इससे बढ़कर के कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के अनुसार उस ग्रंथ को देखने और वहां से प्राप्त करने के लिए कुछ विद्वान जो उस समय के थे वे प्रयास करने लगे, और वहां पर जाकर के देखा तो 40,000 श्लोक प्रमाण जो नीचे नीचे के पत्र थे वे सभी कीड़े खा रहे थे, और वे आज नहीं मिलते जो खा गए, और ऊपर ऊपर जो बचा था उसको प्राप्त किया और उसको बचा लिया गया। यह समाचार जब शांति सागर महाराज को सुनने को मिला तो उनका अंतरंग हिल गया, बहुत दुख हुआ उनको अंतरंग में। भगवान महावीर स्वामी की वाणी नष्ट हो गई, अब हम कहां से लाएंगे, विदेह क्षेत्र तो जा नहीं सकते, अब जो नष्ट हो गए हैं वो हम कैसे प्राप्त करें। षटकंड आगम ग्रंथों में उन्हीं विद्वानों ने लिखा है, जो ग्रंथ कीड़े खाने के कारण से वे पत्र नष्ट हो गए हैं, हम पुनः अब 18,500 वर्ष के बीच में कहीं से भी ला नहीं सकते, क्योंकि वह एक ही प्रति थी और वो नष्ट हो गए। जो बचा था उनका जो संपादन हुआ है, उनका जो प्रकाशन हुआ है ग्रंथ के रूप में, जो को इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतने बड़े बड़े, प्रत्येक ग्रंथ इतने ही बड़े इसी आकार में, और ऐसे ग्रंथ कितने हैं, 40 हैं। धौला के 16 भाग, जय धौला के 16 भाग और महाबंध के 7 भाग हैं, तो 16 16 32 32 और 7, एक कम 40 ग्रंथ है। और इसमें क्या है, जीव सिद्धांत आत्म तत्व का वर्णन है। इस संसार में जितने अनंत संसारी प्राणी हैं, ये सब जीव हैं, ये जीव कैसे जन्म मरण करते हैं, किस गति से निकलकर किस गति में जाते हैं, किन परिणामों से मरण करने के पश्चात कौन सी गति इनको मिलती है, ये कैसे कर्मों का बंध करते हैं, कर्मों का फल कैसे भोगते हैं, इसी का वर्णन, यानी हम सभी आत्माओं का वर्णन इसमें है। हम भी तो संसारी प्राणी हैं ना, क्या मोक्ष गए हुए हैं, नहीं है। हम सब संसारी प्राणी हैं, हम अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किए हैं। हम सभी संसारी प्राणियों को ही आत्म कल्याण हो इस दृष्टि से धर्षेन आचार्य को विकल्प आया, पंचम काल में आत्म कल्याण करने वाले भव्य जीवों का उद्धार कैसे होगा, विदाउट ज्ञान के तो कल्याण होता नहीं है, और उसी ज्ञान परंपरा को बचाने के लिए और हमारे कल्याण के लिए जब उनको विचार आया तो दो मुनि महाराजों को बुला करके पढ़ाया और वह लिपिबद्ध हो गए, लिपिबद्ध हो हुआ और मठों में इनकी रक्षा होती थी, बहुत सुरक्षित रखते थे, लेकिन फिर भी प्रमादवश उनका समय पर देखना जब नहीं हुआ तो नीचे से कीड़े लगे, कई पत्र नष्ट हो गए और बचे हुए 100% मतलब 10% पत्र तो नष्ट हो गए थे, बचे हुए 90% शास्त्र को बचा लिया गया। फिर शांति सागर महाराज ने बहुत चिंतन मनन करके ये कहा कि इस प्रकार से हम ताड़पत्र पर ही लिख करके रखेंगे और सुरक्षा करते रहेंगे तो इस प्रकार से तो शास्त्र सुरक्षित नहीं रख सकेगा, नहीं रख सकते, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ताम्र पत्र में ही लिख करके रखना पड़ेगा। तो उस समय में बड़े बड़े सेठियों को बुलाकर, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक वर्ग को अनुवाद करने के लिए आशीर्वाद दिया और एक वर्ग को ताम्र पत्र पर इन सारे सूत्रों को लिख करके लिपिबद्ध करके रखना, और जो अनुवाद हो जाता है अनुवाद सहित, देखो उसमें हिंदी अनुवाद सहित भी वो ताम्र पत्र में लिखा, हिंदी अनुवाद सहित भी लिखा गया है, और उन्होंने आशीष दिया कि आप लोग एक काम जल्दी करें ताकि भविष्य सुरक्षित हो हमारा, ज्ञान की अपेक्षा से, साहित्य की अपेक्षा से कोई धर्म सुरक्षित रहता है तो शतमानों तक, हजारों काल तक वह जीवित रहता है। अगर किसी धर्म के पास साहित्य नहीं होता है तो वह धर्म बहुत समय तक टिकता नहीं है। धर्म जो होता है वह आत्मधर्म ही सच्चा धर्म है, वह अहिंसा धर्म ही सच्चा धर्म है। आत्मा की साधना करने वाले अहिंसा की साधना करते हैं, अपनी आत्मा को भी अहिंसक रखकर अहिंसा का पालन करते हुए पर को भी दुख से बचाते हैं, उनका उपकार करते हैं, उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, ये बाहरी धर्म है। दूसरे की हम रक्षा करते हैं, हिंसा नहीं करते, और अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हैं, अपने आत्मा को कर्मबंध से बचाते हैं, दुख से बचाते हैं, पाप से बचाते हैं, और निर्वाण की प्राप्ति के उद्देश्य से धर्म करते हैं। आज कई लोग मंदिर में आते हैं, निर्वाण की प्राप्ति किसी का लक्ष्य नहीं रहता, वे जैन नहीं कहला सकते। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करते, पूजा नहीं करते, भगवान का दर्शन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, वे जैन कैसे कहला सकते हैं? कुल से भले ही अपन जैन हो, लेकिन आचार विचार से, ज्ञान से अगर हम जैन बनना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सांसारिक भोग विषयों को प्राप्त करने के लिए मंदिर नहीं आना, मनोकामना की पूर्ति के लिए मंदिर नहीं आना, बल्कि मंदिर आना आत्म कल्याण के लिए और आत्मा के परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। और उस विशुद्धि से 24 घंटे हम जो सांसारिक क्रियाकलाप करके पाप कर्म का बंद करते हैं, और अनादिकाल से जो हमारे लिए कर्मों का बंद हुआ है, उन कर्मों के निर्जरा करे, आत्म परिणामों की विशुद्धि के बिना वह निर्जरा नहीं होती, कर्म नहीं घटते, कर्म नहीं धुलते। इस उद्देश्य से कर्मों को धोने के लिए और आत्मा के परिणामों की विशुद्धि के लिए जो पूजा अनुष्ठान, देव दर्शन, दान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय इत्यादि ये षट कर्म करते हैं श्रावक, वे सच्चे जैन कुल की कोटि में आते हैं, सच्चे श्रावक हैं वो। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति, और उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन को पवित्र रखना। मंदिर में आते ही, भगवान का दर्शन करते ही मन में पवित्रता आनी चाहिए, हमारे मन में रहने वाला मोह परिणाम घटना चाहिए, लोभ घटना चाहिए, क्रोध घटना चाहिए, मान घटना चाहिए, मायाचारी घटना चाहिए। मंदिर में आते ही 4 कषायों का नाश होना चाहिए, और यहां आने के बाद 4 कषाय नष्ट हो गई ना, तो आपका श्रुत ज्ञान, इसमें जो लिखा है षटखंड आगम में, वह ज्ञान यहां सार्थक हो गया। इसको पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद ही ये घटता है, ऐसा नहीं, इसको पढ़े बिना भी हम अपनी कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमको क्रोध नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा है, क्रोध नहीं करो तो श्रुत ज्ञान सुधर जाएगा, सम्यक श्रुत ज्ञान बन जाएगा, मिथ्या श्रुत ज्ञान का विनाश होगा। कषाय जो करता है वह यानी धर्म निरपेक्ष, धर्म की उपेक्षा करके जो कषाय करता है, वह कषाय करने वाला श्रुत ज्ञान मिथ्या श्रुत ज्ञान कहलाता है, मिथ्या श्रुत ज्ञान है। और धर्म की अपेक्षा रख करके जो कषाय करता है, वो कथनचित सम्यक दृष्टि भी होता है, लेकिन कषाय करना कषाय ही है, कषाय छोड़े बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। धर्म के लिए कषाय करो, कि हमको मंदिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, कषाय करो। कोई मंदिर जाने से रोकता है तो ये जीव सम्यक दृष्टि रहेगा। धर्म के लिए जो कषाय करता है, लड़ता है, वो कषाय कषाय नहीं, वो अपने हित के लिए करता है, परंतु फिर भी उस विकल्प को भी छोड़कर ऊपर उठे बिना निर्वाण की प्राप्ति जीव को नहीं होती। अपन ने अभी तक क्या किया है? यही किया है, मंदिर में आए और हाय हाय, हमारा घर ठीक रहे, हमारा जीवन ठीक रहे, हमारा संकट दूर हो, इसलिए आया हूं भगवान, नरियल चढ़ाता हूं, विधान रचाता हूं, सिद्ध चक्र विधान भी करने के लिए बताओ तो वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन संकट टले। संकट की ही चिंता रहती है महाराज। ऐसे तो मैना सुंदरी ने भी तो किया था, उसी को तो सुनकर के हम भी करते हैं, इसमें क्या गलती है आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैना सुंदरी ने कैसा किया था ये आपको ज्ञान ही कहां है। मैना सुंदरी को केवल संकट की चिंता नहीं थी, मैना सुंदरी को चिंता थी हमारे परिणाम और पति के परिणाम कभी न बिगड़े, और परिणामों को न बिगाड़ने के लिए उपदेश की जरूरत है, और ऐसे उपदेश देने वाले मुनि महाराज कहां हैं ढूंढते थे दोनों, और उनके लिए एक मुनि महाराज मिल गए और उनका सच्चा उपदेश उनके लिए मिल गया। उन्होंने कहा ये किसी मनोकामना से यानी इसकी चिंता करने से पति को कुष्ठ रोग हो गया कैसे दूर करें, ये चिंता करने से कुष्ठ रोग दूर नहीं होगा, क्योंकि ये रोग आदि जो होते हैं पाप कर्म के उदय में होते हैं, और यहाँ पर पुण्य कर्म जोर मारता है और पाप कर्म की निर्जरा होती है, तो ऑटोमेटिक संकट दूर हो कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वह रोग दूर हो जाएगा और यह चमत्कार घटित हो जाएगा। क्या उपदेश दिया, चिंता छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो, ये शारीरिक कष्ट हैं, क्षणिक हैं, कभी भी मिट सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, शारीरिक कष्ट कोई बड़े कष्ट नहीं होते, ऐसा कहकर उन्होंने ये उपदेश दिया आप शुद्ध चक्र विधान करो। और कैसे करो, चिंता पूर्वक करो, एक दिन गया ठीक हो रहा है क्या नहीं, दो दिन गया ठीक हो रहा है क्या नहीं, ये विकल्प नहीं, भूल जाओ उस संकट को, उस विकल्प को, चिंता को। तो मन को निर्मल करते हुए पहले दिन से लेकर 10 दिन तक मन की निर्मलता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसी साधना करो, ऐसी पूजा करो, और मन के मनोकामना को हटा दो कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है, ये उद्देश्य नहीं रखना, उद्देश्य के बिना भी वो ठीक हो जाएगा। मन यदि निर्मल रहता है तो मन में कोई भी मनोकामना जीवित नहीं रह सकती, मनोकामना से मुक्त मन ही निर्मल मन कहलाता है, और इसके माध्यम से पाप कर्मों का क्षय होना, पुण्य का बढ़ना और संकट का टलना ऑटोमेटिक होता है। तो मैना सुंदरी ने तो ऐसा किया था, आप आजकल सभी मैना सुंदरी बनकर के सिद्ध चक्र विधान करते हैं, लेकिन संकट ज्यों के त्यों बने रहते हैं जीवन में, क्यों बने रहते हैं, हमको विधि मालूम नहीं है, पूजा करना मालूम है, मैना सुंदरी का चरित्र मालूम है, मुनि महाराज मालूम है, सब मालूम है, लेकिन क्या मालूम नहीं, विवेक नहीं, विधि मालूम नहीं, उस विधि के अभाव में हमारे पाप कर्म टलते नहीं और हमारे संकट दूर होते नहीं। पाप कर्मों को नष्ट किए बिना कोई भी सांसारिक सुख शारीरिक सुख सामने आता नहीं है, ये गारंटी है। और इसी को जब मुनि महाराज ने समझाया तो बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक उन्होंने सारे विकल्पों को दूर करके अपने परिणामों को ऐसा उज्जवल किया कि उन उज्जवल परिणामों के कारण से सारे के सारे पाप कर्म झड़ गए और पुण्य कर्म बढ़ गया, पुण्य कर्म चार्ज हो गया और पाप कर्म डिस्चार्ज हो गए उसके चमत्कार के प्रभाव से। देखो कर्मों को घटाना ही हमारा चमत्कार होता है, चमत्कार कहीं भगवान से प्रकट नहीं होता, भगवान सामने जो विराजमान रहते हैं उनको देख करके मन की विशुद्धि बढ़ाना रहता है, भगवान में चमत्कार नहीं रहता, हमारे परिणामों में चमत्कार प्रकट होता है। हमारे परिणाम यदि सदा उज्जवल है, क्रोध मान माया लोभ से रहित है, पवित्र है, तो पाप कर्म घट रहे हैं, पुण्य कर्म बढ़ रहे हैं, आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय बाकी है, निश्चित रूप से पुण्य कर्म फल देगा और पाप कर्म फल देने से दूर हो जाएगा। तो ये होता है, इसी को सम्यक श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसी सम्यक श्रुत ज्ञान को बढ़ाने के लिए षटखंड आगम की रचना हुई, आत्म कल्याण करने के लिए, कषायों को घटाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये षटखंड आगम की रचना हुई। जैन धर्म में कोई भी देवी देवता या तीर्थंकर या पंच परमेष्टि या कोई मंत्र तंत्र कर्ता धर्ता नहीं होते हमारे संकट के, वो कर्ता धर्ता नहीं है, वो हमारे जीवन के संकट को दूर करते हैं या संकट को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ये किस धर्म में है? जैन धर्म में है क्या? किस धर्म में है कर्ता धर्तापन? जानते हो ना, जान बूझ करके भी ऐसा क्यों हो जाता है पंक्चर? कोई भी घर में संकट आया तो भगवान के पास आ गए, हे भगवान दूर करो दूर करो दूर करो, आप तो चमत्कारी हो, आप तो चिंतामणि हो, आप तो क्या क्या हो, पदवी दे देते हैं उनको चिंतामणि, हमारी चिंता को दूर करने वाले मणि आप ही हैं, ऐसा कहकर उनकी पूजा आराधना में लग जाते हैं। और मन में जो विशुद्धि बढ़ना चाहिए, जो मन में विवेक पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वो तो होता नहीं, और सब कुछ कर लेते हैं। हमारे संकट 10 दिन के बाद भी, सिद्ध चक्र विधान करने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन महाराज किसी किसी का तो दूर होता है, तो किसी किसी का तो दूर होता है तो यह समझ लेना या तो उन्होंने अच्छा किया है इसलिए दूर हुआ, और अच्छा किया भी है और दूर भी नहीं हुआ है तो पूर्व के कर्मों को वे नष्ट नहीं कर पाए इसलिए अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। पर भगवान ने किया, इस मंत्र तंत्र ने किया, इस देव ने किया, इस प्रकार के जो परिणाम हमारी है ना, ये परिणाम अंधश्रद्धा की कोटि में आते हैं, ऐसा महावीर भगवान कहते हैं। ये अंधश्रद्धा नहीं करना। कैसा करना? कल से मंदिर में आना है तो बिल्कुल निर्मल बना करके मन को, कोई भी घर का कितना भी संकट क्यों ना हो, यहां आकर के एक निर्मल मन के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, मैं अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए पूजा कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, ध्यान करना कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, इस प्रकार के क्रियाओं को मंदिर में करेंगे तो यह मंदिर भी आत्म परिणामों की विशुद्धि के लिए सिद्ध होगा, भगवान भी आत्मशुद्धि के लिए, और ये शास्त्र भी आत्मशुद्धि के लिए, और गुरुओं का प्रवचन भी आत्मशुद्धि विशुद्धि के लिए। इस प्रकार आत्मा की विशुद्धि को हमेशा रखोगे तो संसार में कोई भी संकट आने वाले नहीं है, ये गारंटी है। महावीर भगवान गारंटी देते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता और विश्वास कैसा हो चुका है, वहां मांगो वो प्रसन्न होंगे, जब उनकी कृपा बरसेगी तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार की विचारधारा में हम अनादिकाल से जी रहे हैं, इसी को मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह श्रुत ज्ञान भगवान महावीर की वाणी के अनुसार नहीं है तो मिथ्यात्व की कोटि में आता है, और भगवान महावीर की वाणी के अनुसार हो गया तो सम्यक्त्व की कोटि में आता है। ऐसा श्रुत पंचमी जो आज के दिन आई हुई है, यह संदेश देती है आप अपने श्रुत को सुधारो, श्रुत ज्ञानोपयोग सुधर गया तो अनर्थ जो उसी के माध्यम से होता है, उसी के माध्यम से अर्थ की सिद्धि भी हो सकती है। अर्थ यानी परमार्थ, परमार्थ सर्वोत्कृष्ट पवित्र अर्थ, उसकी सिद्धि हो सकती है। और आप अपने आत्म कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान करो, सांसारिक सुख भोगों के लिए धार्मिक क्रियाओं को मत करो, ये जैन धर्म का मूल संदेश है। इस मूल संदेश के अनुसार यदि हम आत्म पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित हमारा कल्याण होता है। ऐसे श्रुत पंचमी जो आज के दिन आई है, आज जो आपने उपदेश सुना है, संकल्प ले लें कि हम कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। महावीर भगवान ने जो कहा है उसी के अनुसार चलेंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही हम अपने परिणामों को उज्जवल करने के लिए प्रवेश करेंगे, पाप कर्म का नाश हो, पुण्य कर्म बढ़े या न बढ़े कहना नहीं पड़ता है। पाप कर्म का नाश करने वाला पुण्य कर्म को स्वतः बढ़ाता है। पुण्य बढ़े ये भी कामना नहीं करना और पुण्य का फल मिले भविष्य में ये भी कामना नहीं करना। केवल जो मन की विशुद्धि बढ़ा करके कर्मों के नाश करने का जो पुरुषार्थ करता है उनको भौतिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति भी बिना मांगे ही मिलता है। मोक्ष भी बिना मांगे ही मिलता है। ऐसा मोक्ष, परमार्थ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भव्यात्मा पुरुषार्थ करता है वो सांसारिक रूप से अवश्य स्वाभाविक रूप से ही विदाउट कामना के ही सुखी रहता है, वही चक्रवर्ती बनता है। भौतिक रूप से भी उत्कृष्ट सुखी यदि इस संसार में यदि कोई हो सकता है तो सम्यक दृष्टि जीव ही हो सकता है। सम्यक दृष्टि जिसका श्रुतक ज्ञान गड़बड़ नहीं है वह। 6:30 हो गया है, समय ज्यादा न लेते हुए इतना ही कहूंगा, आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय भी परिणामों की विशुद्धि के लिए करें, पूजन करें कषाय छोड़ने के लिए करें। क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषाय हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको इनसे दूर रहना, इस उद्देश्य से सारे कार्य करना। दान करें कषाय छोड़कर, तीर्थ यात्रा करें कषाय छोड़कर, स्वार्थ के लिए नहीं आत्म कल्याण के लिए ये करेंगे ना, कितने लोग करेंगे? ये तो सभी तैयार हो जाते हैं, बाद में भूल न जाना। बाद में भूल नहीं जाना और किसी को करता धरता नहीं मानना कि अभी तक हमने इनसे पाया है भविष्य में भी इन्हीं से पाता रहूंगा। ये देते हैं और हम लेते हैं, ये सभी अंधश्रद्धा है, इससे दूर रहना चाहिए और अपने श्रुत ज्ञान को श्रुत पंचमी के पावन पर्व पर दीक्षित कर लेना चाहिए। उसको अंधश्रद्धा से मुक्त करके सम्यक श्रद्धा में दीक्षित कराएंगे तो आप दीक्षित हो जाएंगे। जिनका ज्ञान दीक्षित हो गया उनका शरीर ऑटोमेटिक दीक्षित हो जाता है, संकटों से मुक्त हो जाता है। संकट से मुक्त शरीर ही दीक्षित शरीर है। केवल ज्ञानियों को कोई रोग नहीं होता, उनका शरीर भी दीक्षित है। केवल ज्ञानियों को कोई कषाय नहीं होती, कोई अंधश्रद्धा नहीं रहती, यही उनकी दीक्षा है। ऐसे दोनों को दीक्षित करके निर्वाण प्राप्ति का पुरुषार्थ हमें करना और निर्वाण सुख को प्राप्त करना यहाँ हमारा लक्ष्य रहे और इसके माध्यम से सबका कल्याण हो। जिन्होंने भी हाथ उठाया था उनको जल्दी से जल्दी मोक्ष हो, मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद के साथ आज के प्रवचन को विराम देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।